So we are in Mujabi Bagh, Yatra. We are beginning the ninth chapter of Madhyalila called The Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's Travels to the Holy Places.
It's called Punjabi Bagh Yatra, Sri Chaitanya Charitamrita Madhyalila, Adhyay 9, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Tirth Yatrae.
So before we begin, let us offer Guru Purvam pranams. After leaving Vijayanagar, Sri Chaitanya Babu visited such places of pilgrimage as Gautami Ganga.
Vijayanagar se chalne ke baad Sri Chaitanya Mahaprabhu ek teerth sthan pe gaye, Gautami Ganga.
And there's a list of places of pilgrimage he visited.
Aur aage puri list di hui hai jahan jahan teerth yatra pe gaye.
Finally, the Lord went to Sri Rangakshetra, where he converted a Brahmana named Venkatabhatta.
Ant mein Mahaprabhu Sri Rangakshetra gaye, jahan unhone Venkat Bhatt namak Brahman ko sab parivar Krishna Bhakt banaya.
Who, along with his family, took up devotional service to Krishna.
Jahan unhone Venkat Bhatt namak Brahman ko sab parivar Krishna Bhakt banaya.
After leaving Sri Ranga, Chaitanya Mahaprabhu reached Rishabh Parvata, where he met Paramananda Puri, who later arrived at Jagannath Puri.
Sri Ranga se chalne ke baad Sri Chaitanya Mahaprabhu Rishabh Parvata hai, jahan unki bhet Paramananda Puri se hui.
Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu then proceeded further, arriving at Situ Banda, Rameswar.
तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु आगे गए और सेत बंद रामेश्वर पहुंचे।
At Sri Shaila Parvata, the Lord met Lord Shiva and his wife Durga in the dress of a Brahman and a Brahmani.
श्री शैल पर्वत पर उनकी भेंट शिवजी तथा उनके पत्नी दुर्गा से एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के वेश में हुई।
Later he proceeded to southern Mathura.
इसके बाद वह काम कोष्ठीपुरी गए और फिर वहां से दक्षिण मथुरा पहुंचे।
A Brahmana devotee of Lord Ramachandra talked with him.
उनसे भगवान रामचंद्र के भक्त एक ब्राह्मण ने बातें की।
Then on the hill known as Mahendrashaila, the Lord saw Parashuram.
तत्पश्चात महाप्रभु ने कृतमाला नदी में स्नान किया।
He also visited Rameswara, where he collected some papers connected with Sita Devi, whose illusory form had been kidnapped by Ravana.
उन्होंने महेंद्र शहर नामक पर्वत पर परशुराम के दर्शन किए। तत्पश्चात महाप्रभु से तू बंध गए और धनुष तीर्थ में स्नान किया। वे रामेश्वर भी गए, जहां उन्होंने सीता देवी से संबंधित कुछ कागजात प्राप्त किए, जिनके माया रूप का हरण रावण ने किया था।
Later we will hear the details of this story.
आगे चलकर हम इस कथा को विस्तार में पढ़ेंगे।
There was a Brahmana who was fasting, who was a devotee of Sri Rama.
एक ब्राह्मण था जो व्रत रखा हुआ था, जो भगवान राम का भक्त था।
He was fasting because he could not tolerate that Sita was kidnapped by Ravana and the whole situation.
और वो इसलिए व्रत रखा हुआ था क्योंकि माता सीता का अपहरण हो गया था। और
these papers that are mentioned here, when Sri Chaitanya Mahaprabhu read these papers as evidence that Sita had been, it was a false Sita that was kidnapped by Ravana, then the Brahmana became pacified.
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको वो कागजात दिखाए जिसपे वर्णन था कि माया रूप का हरण रावण ने किया था, वास्तविक सीता का हरण नहीं किया था, तो इससे ब्राह्मण को सांत्वना प्राप्त हुई।
So it was only an illusory form of Sita, not the real Sita that was captured by Ravana.
तो जो रावण ने सिर्फ माया रूप का हरण किया था माता सीता के, वास्तविक रूप का नहीं।
The Lord then confronted, later he confronted the Bharatacharyas at Malara Desha and saved Kalakrishnadas from their clutches.
इसके बाद महाप्रभु ने पांडव देश, ताम्रपर्णी नदी, नए तृप्ति, चीरतला, तिलकांची, गजेंद्र मोक्षण, पानागढ़ी, चांतापुर, श्री वैकुंठ, मल्य पर्वत तथा कन्याकुमारी इत्यादि स्थानों का भ्रमण किया। इसके बाद मल्लार देश में महाप्रभु का सामना भट्टधारियों से हुआ।
The Bhattatharis were gypsies. Gypsy, you don't know what gypsy means?
I know, but I don't know the Hindi word.
Huh?
I don't know the Hindi word. I don't know the Hindi word of gypsy.
The translation of gypsy, I mean. You know, in the West, there's still a few gypsies left. They came from India. It's not common. Earlier in the United States, a lot of them migrated to the United States, say in the 1920s or so. And okay.
भील तो जब पाश्चात्य देशों में जितने भील हैं वो भारत से ही आए हैं, भारत बता रहे हैं।
In the US, they would always dress very colorfully.
इन सबका पहनावा बहुत रंगीला होता है।
They would wear large earrings in their ears.
और अपने कानों में बड़े-बड़े बाली पहनते हैं।
They used to have trucks, decorated trucks with signs on the side of the truck. This is in the US I'm talking about, but they came from India.
ये महाराज US का वर्णन कर रहे हैं, परंतु वो भारत से आए हैं। उनके पास बड़े-बड़े ट्रक होते हैं जिसको
they became famous in the United States as fortune tellers, you know, crystal ball and all that, you know. Gypsies.
तो US में वो प्रसिद्ध हुए आपका तकदीर बताने वाले लोगों के रूप में।
tribe, you know, they're what, in one sense, subculture, aboriginal tribe, you know.
तो आदि जितने आदिवासी हैं उससे हल्का सा ऊपर आप समझ लीजिए।
So what happened was these gypsies. Bhattatharis they were called.
The Bhattathari, उन्हें कहा जाता था।
So I don't know if they still exist, but they existed at the time of Mahaprabhu.
तो मुझे नहीं पता वो आज भी उनका अस्तित्व है, परंतु महाप्रभु के समय वो।
So Kala Krishnadas, he was a servant of Mahaprabhu.
Kala Krishnadas उस समय महाप्रभु के सेवक था।
But the gypsy women, they kidnapped him and seduced him.
परंतु जो भट्टाधारी स्त्रियां हैं उन्होंने उसका अपहरण कर लिया था।
So Mahaprabhu, because of course Bhaktivinoda Thakur is only giving a very rough summary, but this is a portion of the rest of the story. And Mahaprabhu personally went there to rescue him from these Bhattatharis.
तो यहाँ पर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर संक्षिप्त में इसका सारांश दे रहे हैं, आगे जाके हम इस कथा को विस्तार में पढ़ेंगे कि महाप्रभु ने उसको उसके चंगुल से
छुड़ाया,
तो उसकी शिखा से पकड़कर महाप्रभु से खींच कर वापस लाए।
But actually, after that, if you can correct me if I make a mistake, because it's been a long time since I've read the story.
उसके बाद जो हुआ महाराज बता रहे हैं, आप मेरे को सही कर सकते हैं अगर मैं इसमें कुछ गलती करूं बताने में, क्योंकि मैंने बहुत पहले इस कथा को पढ़ा था।
As far as I recall, Mahaprabhu somewhat rejected him after that.
जितना मैं याद कर पा रहा हूं कि महाप्रभु ने उनको तिरस्कार बहिष्कार कर दिया था काला कृष्णदास।
So he turned him over to Nityananda Prabhu.
और बाद में उन्होंने उसको नित्यानंद प्रभु के हवाले किया।
And I think Nityananda Prabhu took him to Bengal, isn't it?
और नित्यानंद प्रभु ने उनको फिर बाद में बंगाल भेजा।
So that's a brief description of a little more description of what happened in this pastime. It's described, of course. It'll be in this chapter that is described in detail.
इस अध्याय में इस कथा को विस्तार में बताया जाएगा। मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया।
So then the next pastime is very significant.
इसका जो अगली लीला है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Because it was on this tour that the Lord collected the fifth chapter of Brahma Samhita on the banks of Payasvini River.
महाप्रभु ने पायस्वी नदी के तट पर ब्रह्म संहिता का पांचवा अध्याय प्राप्त किया।
Matsya Tirtha, the village of Udupi, he saw the Gopal Devi.
इसके बाद वह पायस्विनी शिंगवेरपुरी मठ तथा मत्स्य तीर्थ गए।
Udupi is the headquarters for the followers of Madhvacharya.
तो जब मध्वाचार्य के जितने अनुयायी हैं, उनका मुख्य केंद्र है उडुपी में।
So the deity Gopal was installed by Madhvacharya.
उडुपी नामक गांव में उन्होंने श्री मध्वाचार्य द्वारा संस्थापित गोपाल विग्रह के दर्शन किए।
He then defeated the tattvavadis and shastric conversation.
तत्पश्चात उन्होंने तत्ववादियों को शास्त्रार्थ में हराया।
When he continued his travels to different holy places,
इसके बाद महाप्रभु फल्गुतीर्थ, त्रित्कूप, पंचाप्सरा, सूरपारक तथा कोलापुर गए।
Then he received news from Sri Rangapuri that Shankar Narayan or Vishwarupa had disappeared. That's his brother.
पांडवपुर में उन्होंने शंकारण्य विश्वरूप के अंतर्धान होने का समाचार श्रीरंगपुरी से।
That was his excuse for going on a tour of South India, was to find out if he could get some clue as to what happened to his brother. So here he got this clue somehow, or somebody knew that he had left his body.
दक्षिण भारत की यात्रा का एक बहाना महाप्रभु का ये भी था कि वह विष्णुरूप को खोज सके या उनका कोई समाचार प्राप्त कर सके। तो यहाँ इनको जिन भक्त को पता था, तो उन्होंने महाप्रभु को ये संदेश दिया।
He then collected a book written by Bilvamangala Thakur, Sri Krishna Karnamrita.
फिर वे कृष्ण वेणवा नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने वैष्णव ब्राह्मणों के यहां से बिलवंगल ठाकुर कृत श्री कृष्ण कर्णामृत नामक पुस्तक प्राप्त की।
So you can see that we're very indebted to Sri Chaitanya Mahaprabhu for rescuing these shastras. Otherwise, if he had not rescued it, because what we have available is only the fifth chapter of Brahma Samhita, because that's all Mahaprabhu found. Where's the tech man?
तो हम देखते हैं किस प्रकार महाप्रभु ने शास्त्रों को बचाया, उनको दोबारा खोज कर स्थापना की। जैसे ब्रह्म संहिता का आज हमारे पास सिर्फ पांचवा अध्याय ही उपलब्ध है, क्योंकि महाप्रभु को सिर्फ पांचवा अध्याय ही उन्होंने खोजा।
He then entered Dandakari Karanya and liberated seven palm trees.
वे दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए और वहां उन्होंने सात ताड़ वृक्षों का उद्धार किया।
And he went up to the source of the Godavari River, Kushavarta.
Mm-hmm.
Then he finally returned to Jagannath Puri. So thus the Lord visited almost all the holy places in South India. He finally returned to Jagannath Puri by taking the same route after visiting Vidyanagar again.
अंत में वह उसी रास्ते से होकर फिर से विद्यानगर होते हुए जगन्नाथ पुरी लौट आए.
Okay, text number one.
प्यार संख्या एक.
नालमता ग्रह ग्रस्तान. Come on, Jeev Jago. Nanamata graha grastan dakshinatya jana dvipan kirparina vimuchyaitan 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 Gorashtapre Savaishnavan Nanamata Graha Krastan
Nanamata Graha Krastan
Dakshinatya Janadvipan
Dakshinatya Janadvipan
Viparina Vimuchyaitan
Viparina Vimuchyaitan
Yaitan, well, our Bengali isn't here. I don't know if it's pronounced Yaitan or you're saying Yaitan, but our Bengali scholar isn't here.
हमारे बंगाली पंडित यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, तो यहाँ पर Yaitan है, Yaitan.
There's no Bengali scholar here, is there?
यहाँ पर कोई बंगाली उपस्थित है? किशोरी. Kishori Krishna Prabhu.
Where is Kishori? He's in the back there. Hey, Kishori. We need your valuable Bengali input. Is it pronounced? They're saying Vimuchyaitan. I was saying Vimuchyaitan. So which is correct? In Sanskrit. Oh, he doesn't know Sanskrit. Yeah, no, I thought this was Sanskrit, that's right. Sorry, this is Sanskrit, you're right, you know. Gorash Chakre Sav Vaishnavan Nanamata Graha Grastan Dakshinatya Janadvipan Kiparina Vimuchyaitan Gorashtakresa Vaishnavan. Next. Vaishnavis. Nanamata graha grastan. Sinatya janadvipan. Viparina vimuchyaitan. Gorashtakresa Vaishnavan. Nanamata graha grastan. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu converted in the heavens of South India.
अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया.
These people were as strong as elephants.
ये लोग हाथी के समान बलशाली थे.
But they were in the clutches of the crocodiles of various philosophies.
किंतु वे विभिन्न विचारधाराओं रूपी घड़ियालों के चंगल में फंसे हुए थे.
Such as the Buddhist, Jain, and Mayavada philosophies.
Yatha Bodh, Jain, Mayavadi Darshan.
With his disc of mercy, listen to the language here. With his disc of mercy,
यहाँ पर आप भाषा को समझिए.
Lord delivered them all by converting them into Vaishnavas, devotees of the Lord.
महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी चक्र से सबको वैष्णव अर्थात अपन भक्त बनाकर सबका उद्धार किया.
Sri Chaitanya Mahaprabhu is converting the people of South India into Vaishnavas, compared her into Lord Vishnu's delivering Gajendra the elephant from the attack of a crocodile.
यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत के लोगों को वैष्णव बनाए जाने की तुलना भगवान विष्णु द्वारा घड़ियाल के आक्रमण से गजेंद्र का उद्धार किए जाने से की गई है.
When Sri Chaitanya Mahaprabhu visited southern India, almost all the residents there were within the jaws of the crocodiles of Buddhist, Jain, and Mayavada philosophy.
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की तब वहाँ के प्राय सारे निवासी बौद्ध जैन तथा मायावादी दर्शन रूपी घड़ियालों के जंगलों में फंसे हुए थे.
Here Kaviraj Goswami states that although these people were as strong as elephants, they were almost in the clutches of death because they were being attacked by the crocodiles of various philosophies.
यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि ये लोग हाथियों के समान बलवान थे किंतु वे लगभग मृत्यु के चंगुल में थे क्योंकि उन पर विभिन्न दर्शनों रूपी घड़ियालियों ने हमला कर रखा था.
So this reference to being as strong as elephants is not necessarily referring to physical strength.
तो यहाँ पर जो उपमा दी गई है कि वे लोग हाथियों के समान बलवान थे ये जरूरी नहीं है कि ये उनके शारीरिक बल को उदित करें.
Emotional, psychological, religious, philosophy like that. That's what this elephant strength is referring to, not to physical strength.
उनके भाव, मनोभाव, उनके दर्शन और उनके सिद्धांतों को यहाँ पर चर्चा की गई.
In other words, they were firmly stuck in their understandings of truth.
कि वो परम सत्य की समझ में बिल्कुल अटके हुए थे, समझ नहीं पा रहे.
And in this tour description, we will see how Mahaprabhu, they may have been as strong as elephants in their conviction of deviant philosophies.
और हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे वे हाथियों के समान बलशाली थे कि जो उनकी गलत धारणाएं थी उन पर उनका विश्वास उतना ही था जितना हाथी में बल होता है.
But since Mahaprabhu is the origin of all of the Vedas and all religious principles and all Sanatan Dharmas emanating from him,
क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सभी धार्मिक सिद्धांतों, वेदों और दर्शनों के स्रोत हैं.
So therefore, this pastime will show how he predominates. You know how he easily defeated all these rascals and their philosophies.
तो ये लीला से दर्शाते हैं कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सरलता से इन सभी धूर्तों को इन सभी अपसिद्धांतों के चंगुल से निकाल लिया.
Now, Jains are mentioned here as a deviant philosophy. Jain, J-A-I-N.
तो यहाँ पर जैन जो है इसको बताया गया है कि ये अपसिद्धांत.
In modern times, this is a sensitive point.
आज के समय में ये बहुत ही संवेदनशील.
I don't know if there are any Jain present in our audience. I guess I won't ask for any show of hands. But in the city of Delhi, there's quite a few Jains.
मैं यहाँ पर हाथ खड़ा करके ये नहीं पूछूंगा कि आप में से कोई जैन है या नहीं, परंतु दिल्ली में बहुत जैन की संख्या है.
Would they be in the hundreds or in the thousands, Rukmini Krishna? The number of Jains in Delhi, would they be in the hundreds or in the thousands? Huh? He doesn't know. I mean, less than hundreds? Less than thousands? Oh, 100,000? Oh, that's a pretty formidable number.
Indian railways have Jain food now. Indian railways have Jain food.
Indian railways is run by a Jain.
Indian railways have Jain food.
Oh yeah, Jain food and some, well not all of the railways. So you can't always order a Jain, yeah. Talk.
On order.
Oh, before you, when you book here. Or Jain mail, yeah. Talk. Well, yeah, but there's guests that don't know English.
तो आज भारतीय रेलवे में आप बुकिंग करके जैन खाना भी प्राप्त कर सकते हैं, जैन फूड.
Jain meal means that they also don't eat garlic and onions.
तो जैन खाने का अर्थ है मुख्यतः बिना प्याज लहसुन के खाना.
Well, that's a step up from most, say, all the tens of thousands or however many thousands of restaurants are in the city of Delhi. The Jain restaurant at least is a notch up from the others because they don't use garlic and onions. That doesn't mean you should go there and just, you know, pick out as we say.
So, आज दिल्ली में कई 100,000 रेस्टोरेंट हैं और ये जो जैन फूड का ये जो पूरा कंसेप्ट है ये कम से कम एक कदम उन्होंने आगे उठाया है प्रगति की तरफ.
How many of you know about the origin of Jains? I mean, I'm only talking about Jains because Krishna Ashkarvish Goswami has mentioned them. Otherwise, I would not talk about them. It's a sensitive issue because they're nice people, they're pious. You understand?
तो आप में से कितना को जो जैन है उनका स्रोत पता है. मैं यहाँ पर मुख्यतः जैन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर चर्चा की है. ये बहुत ही संवेदनशील पॉइंट है.
I'm not trying to, yes.
Starting from Rishabhdev.
Yes. He's jumping the gun. That's a racing term, you know, a foot race, you know, bam, the gun goes off and then if somebody starts running before the gun goes off, then that's called jumping the gun. You know, the gun goes off, bam, and then everybody starts running.
So jaise race mein hota hai, on the mark, get set, or गोली चलाई जाती है, उस गोली चलाने से पहले अगर कोई भागना शुरू कर दे तो आपका उत्तर उसी प्रकार से है कि महाराज के प्रश्न पूछने से पहले
I was going to say that but he beat me to it.
तो आपका उत्तर उसी प्रकार से.
However, I have to make a correction.
हाँ, परंतु इसमें मैं एक
the correction is so Jainism is the only religion in the world that is older than Kali Yuga.
Jainism है ये एकमात्र ऐसा धर्म है आज के समय संसार में जो कलयुग से पुराना है.
This is very important to understand.
ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना.
Now, so many of you are preachers to university students, and so part of what you have to teach students is the context of this Krishna consciousness movement.
आप में से कई भक्त यहाँ पर प्रचार करते हैं, विशेषकर युवा वर्ग को यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपको कृष्ण भावना अमृत का जो कंटेक्स्ट है इसको समझाना होगा.
And the Vaishnav religion as the oldest in the universe.
जो वैष्णव धर्म है इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना धर्म है.
Very important part of our preaching. We have to establish this.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे प्रचार की और हमें इसे स्थापित करना चाहिए.
After all, Lord Brahma, the father of the universe, the source of all the Prajapatis, all the Manus, everything is emanating from Lord Brahma.
जैसे कि भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के पिता हैं, उन्हीं से सारे प्रजापति आए हैं.
He's the original person in the universe.
तो वो आदि पुरुष है इस ब्रह्मांड के.
Next to Garbhodakshaya Vishnu, that is. What I mean to say, as far as you could say.
Garbhodakshaya Vishnu ke baad.
As far as Jivas is concerned, he's the first in the universe.
और जहाँ तक जीव की बात है, वो पहले जीव हैं इस सृष्टि के.
So our sampradaya, we are called the Brahma Madhavya Gaudiya Vaishnava sampradaya. So we are directly descending from Lord Brahma. So this is the most authorized, oldest religion in the universe.
Brahma Madhav Gaudiya Vaishnava sampradaya. ये हमारे संप्रदाय का नाम है. हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय से ही आ रहे हैं. और वो सबसे प्रामाणिक, सबसे पुराने ये संप्रदाय है.
So we have to educate people on this point.
तो हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए इस बात पर.
In India, people have educated people. They always have a rough idea that Vaishnavas have been around a long time. But in America, forget it. They think the Hare Krishnas are something new.
भारत में फिर भी लोगों को कुछ धारणा है कि वैष्णव थोड़ा पुराना धर्म है. अमेरिका में तो बात ही भूल जाइए. उन्हें लगता है कि ये जो धर्म है कुछ नया उत्पत्ति है.
So, the Jains then are the only religion that is older than Kali Yuga. All the others are coming manifest in Kali Yuga only.
तो बाकी जितने धर्म हैं उनकी उत्पत्ति कलयुग में हुई है. जैन धर्म एकमात्र ऐसा है जिसकी आयु कलयुग से पहले की है.
Here Kaviraj Goswami mentions Buddhists, he mentions Mayavadis, these are within Kali Yuga.
जैसे कि कविराज गोस्वामी यहाँ बताते हैं बौद्ध, जैन तथा मायावादी, तो बौद्ध और मायावादी ये कलयुग में ही आए हैं.
Mahaprabhu was not confronting any Christians in those days, but Christianity is also, as we know, only 2016 years old. That's very recent.
तो महाप्रभु वहाँ पर क्रिश्चियन से उनकी भेंट नहीं हुई. और हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जो धर्म है ये 2016 साल पुराना है.
The Jews predate the Christians. I'm not sure by how much time period, but they predate the Christians.
जो Jews हैं वो क्रिश्चियन से भी पहले आए हैं. कितना अंतर है मुझे ये नहीं पता, परंतु क्रिश्चियन से पहले
के. Even the Jews is a Jews are a very old religion, but they are also that religion started up in Kali Yuga also. Try to understand the importance that these religions all popped up in Kali Yuga, except for Vaishnavism and Jainism.
The Jews' religion है, वो भी Christian से पहले का है, परंतु उसकी उत्पत्ति भी कलयुग युग में ही हुई है.
But unfortunately, although Jainism is very ancient, as Prabhu has pointed out, so I'm clarifying, it's not emanating from Lord Rishabhdev, it's emanating from the time of Lord Rishabhdev. That's a really essential distinction you have to make. That if you're taking notes, write that down.
But the दुर्भाग्यवश जैन धर्म है, मैं यहाँ पर उनको ठीक करना चाहूँगा. जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये ऋषभदेव से नहीं आया है, परंतु ऋषभदेव जी के समय से चलता हुआ है. ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है. अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो
Lord Rishabhdev certainly did not start the Jain religion. Certainly not.
भगवान ऋषभदेव ने निश्चित रूप से जैन धर्म की शुरुआत नहीं की. निश्चित रूप से.
After he retired, as the Vedic system is the king or emperor retires from his duties as king, then the Vedic system is they would go to the forest and they would wander about and they would dedicate themselves in self-realization and devotional service.
जैसा कि वैदिक संस्कृति है कि राजा का कर्तव्य निभाने के बाद जब उन्होंने रिटायर हुए वो जंगल जाकर पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित किया परम सत्य के प्राप्ति.
So Srimad Bhagavatam describes about Lord Rishabhdev after his retirement from being emperor.
श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है. ऋषभदेव जब उन्होंने अपना राज्य का त्याग कर संन्यास ग्रहण
किया. Basically after he instructed his sons in pure Krishna consciousness.
और उन्होंने अपने पुत्रों को निर्देश दिया कृष्ण भावना व्रत का.
So then he wandered about naked.
तब वो नगरों में इधर उधर घूमे नग्न अवस्था में.
Matted hair. And he's wandering about like a madman.
और एक बिल्कुल पागल व्यक्ति की तरह, मदमस्त व्यक्ति की तरह इधर उधर जा रहे थे.
And just like Shukadev Goswami was wandering naked also.
जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भी नग्न अवस्था में चलते थे.
After he left his family life, he didn't stick around. It's amusing. He didn't stick around. Shukadeva Goswami didn't stick around. Okay.
तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो भी तुरंत अपने परिवार के जीवन में उन्होंने नहीं रहे, वो तुरंत छोड़कर चले गए।
But as soon as he took birth, he was in the womb for 16 years. Don't ask me how that worked.
तो वो घर में थे 16 वर्ष के लिए, मेरे से बात पूछेंगे कि ये कैसे संभव
है। I don't think anybody else can hear can explain it either.
और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई उपस्थित भक्त भी इसको एक्सप्लेन कर सकता।
Then as soon as he came out of the womb, he left home.
जैसे ही वो गर्भ से बाहर आए उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया।
So the Bhagavatam describes how his father, Srila Vyasadev, was chasing after him because he was attached to the idea of having a son. I mean, here he is, Mahabhagavat, still he was attached to the idea of having a son, a loving relationship with a son, training him in Krishna consciousness and all that. But he, you know, zoom, he was out of the house. He left.
और यहाँ श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि किस प्रकार उनके पिता व्यास थे, हालांकि वो महाभागवत है परंतु निश्चित रूप से वो एक प्रेमय संबंध चाहते थे अपने अपने पुत्र से और उनको प्रशिक्षित करना चाहते थे कृष्ण भावनामृत में।
Already fully self-realized, on account of hearing the Bhagavatam from his father. So he didn't need, you could say, you know, he certainly didn't have a gurukul and all that, he didn't need. He was fully self-realized coming out of the womb. He simply left and he was already Mahabhagavat converted. By the pure teachings of Sanatana Dharma given by Lord Srila Vyasadeva himself.
तो सुखदेव गोस्वामी पहले से ही आत्म साक्षात्कार में स्थित थे, उन्हें किसी गुरुकुल या शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी और बाद में उन्होंने व्यासदेव।
So the people like villagers and all that, because India was all villages in those days except for a few prosperous cities where kings lived. Few prosperous cities where kings lived. Otherwise, all of India was villages.
उस समय भारत में पूरा का पूरा भारत लगभग गांव में ही था, और कुछ जो राजा होते थे, वो एक शहर में रहते थे।
They used to pass urine on him and throw stones and so forth. Not very charitable.
और उस समय पत्थर मारते थे।
They could not recognize. Villagers could not recognize a Mahabhagavat, a Nitya Siddha devotee.
उस समय जो गांववासी थे वो नित्य सिद्ध महाभागवत भक्त को पहचान नहीं पाए।
But as soon as he arrived at the gathering of sages, they immediately recognized him by his effulgence, by his lotus eyes, by his demeanor. You know the word demeanor.
परंतु जैसे ही वो महान ऋषिगणों की सभा में पहुंचे गंगा के तट पर, तो सभी उनको पहचान गए उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर, उनकी आंखें कमलों के समान।
ऋषभदेव, he was in Treta Yuga, is that right?
जो ऋषभदेव थे वो त्रेता युग में थे, क्या ये सही है?
Don't recall. But I don't recall if it was Treta Yuga or Satya Yuga, frankly. But it must, I think it was Treta Yuga.
तो मैं इसको ठीक से याद नहीं कर पा रहा कि उस त्रेता युग से थे या सत्ययुग से, परंतु मुझे लगता है त्रेता युग था।
So he was going naked through the streets, matted hair, dirty and all that.
और वो गलियों से जा रहे थे नग्न अवस्था में, उनके बाल बिखरे हुए थे।
So the villagers thought he was a bad man and they were spitting on him and
तो लोगों को लगा कि ये पागल व्यक्ति हैं और उनकी तरफ वो पत्थर फेंक रहे थे।
If they thought somebody was a man animal, this is what they would do. They would persecute such person. So they could not recognize Lord Vrishabh. They were doing like that.
तो अगर उन्हें लगता था कि कोई man animal है, तो उसको वो मार देते थे। तो उस समय उनका पहचान ऋषभदेव की असली उनका जो अस्तित्व है, उसको पहचान नहीं पाए।
So there was a king at the time. I don't know his name. There was a king at the time.
एक राजा थे।
He saw Lord Vrishabhdev. He saw how he was behaving with matted locks and going naked.
उन्होंने देखा भगवान ऋषभदेव को और देख रहे थे वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं।
He knew that he was a saintly person, but he could not recognize him as the Supreme Personality of Godhead. Certainly not.
वो जानते थे कि ये एक संत पुरुष हैं, परंतु ये परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, ये निश्चित रूप से वो पहचान नहीं पाए।
Neither did he surrender to Lord Vrishabhdev.
ना ही वो उनको शरणागत हुए।
If he was sincere, he would have surrendered the lordship.
अगर वो वास्तव में गंभीर होते, तो उनके प्रति शरणागत होते।
Instead of surrendering the Lord Vrishabhdev, he thought, "Oh, so the way this saintly person is living naked and talking philosophy and doing all these things, oh, This is very cool, so to speak. This is very first-class way of life.
तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से हमारा ये ऋषभदेव जी रह रहे हैं, नग्न अवस्था में घूम रहे हैं, सिद्धांत की चर्चा भी करते हैं. कहने लगा कि ये बड़ा अच्छा शैली है जीवन जीने की.
So imitating Lord Rishabhdev, he also gave up his kingdom and started going naked.
और उनकी नकल उतारते हुए उन्होंने भी अपने राज्य का परित्याग कर दिया और नग्न अवस्था में घूमने लगे और बाल अपने लंबे करके रहने लगे.
It is this deviant king who did not follow the teachings of Lord Rishabhdev. He was the origin of the Jain religion.
तो जो वो राजा था जो इस असली सिद्धांत से भटक गया था, तो यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत हुई.
And to this day, some, I don't know how frequent it is, maybe it's not frequent, but some of the Jain gurus go naked still and sit on the vyasasan naked. I mean, it's rather disgusting.
तो आज भी जो जैन धर्म के जो कई गुरु हैं वो नग्न अवस्था में घूमते हैं, व्यासासन पे भी नग्न अवस्था में बैठते हैं.
So it's our duty to explain the history. And that's why Krishna covers Goswami. I'm only telling this not to criticize the Jains, because you may have some friends or Jains.
तो मैं इसकी चर्चा उनकी निंदा करने के प्रयास से नहीं कर रहा. आपके कुछ हो सकता
है जैन हो,
ये बहुत अच्छे लोग होते हैं.
I'm not trying to, you know the word vilify? Yes, I'm not trying to vilify them. I'm not trying to make them into demons. They aren't, they're pious.
तो वो उनमें से बहुत से जैन बहुत ही पुण्य आत्मा भी होते हैं.
I went to the home and location of business of one Jain gentleman.
मैं एक बार एक किसी जैन सज्जन पुरुष के घर पे गया.
And I did some preaching and he was favorable to ISKCON.
मैंने कुछ उसे प्रचार किया और वह ISKCON के प्रति फेवरेबल था.
So he wrote on the spot, he wrote a half a lakh donation to ISKCON.
और उन्होंने अच्छी डोनेशन
caught your attention.
उन्होंने 50,000 रुपए डोनेशन भी दिया.
Karuna perked up on that one.
Karuna chan pro ne cultivate kar.
So this is the background that we have to understand. Christianity 2016 years ago.
Christianity 2016 saal purana hai.
Then Buddhism also recent.
Ye Buddhism hai wo bhi haal mein hi bana hai.
The Jews we already mentioned, and the followers of Shankaracharya. Shankaracharya also in Kali Yuga.
Shankaracharya hain wo bhi Kali Yuga mein hi aaye.
So these major religions of the world, they're all recent in comparison to pure Krishna consciousness.
तो जितने भी ने प्रमुख तथाकथित धर्म हैं, इनकी स्थापना इस कलयुग में ही हुई. उसकी तुलना में जो कृष्ण भावनामृत सनातन है.
Defeating all these deviants.
तो महाप्रभु ने इन सब को पराजित किया.
So crocodiles, I mean, one could say it's rather insulting, but I'm just repeating what Prabhupada says here. Don't blame me.
तो यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो घड़िया है, मगरमच्छ.
Almost all the resonance were within the jaws of the crocodiles of Buddhist, Jain, and Mayavadi philosophy.
तो जितने भी वहाँ के निवासी थे वे विभिन्न विचारधाराओं यथा बौद्ध, जैन, मायावादी दर्शन रूपी घड़ियालों के चंगल में फंसे हुए थे.
So then Prabhupada continues, however, just as Sri Chaitanya Mahaprabhu in the form of Vishnu saved the elephant Gajendra from the clutches of the crocodile, so he saved the people of South India from the clutches of various philosophies by converting them into Vaishnavas.
आगे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु के रूप में गजेंद्र हाथी को अपनी कृपा द्वारा घड़ियाल के चंगुल से बचाया, वैसे ही उन्होंने दक्षिण भारत के सभी लोगों को वैष्णव बनाकर विभिन्न दर्शनों के पाश से छुड़ाया.
Any questions, comments, corrections?
किसी का कोई प्रश्न, टिप्पणी या कोई करेक्शन?
Okay, thank you very much. Karanjula, Sri Chaitanya, you have a question? Yes? Loudly, please. Quickly.
जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गया के जंगलों में जा
रहे तो सारे जानवरों का हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उसी तरह ऋषभदेव और जब सुखदेव जी जा रहे हैं तो लोगों का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ?
Well, Shivadeva Goswami was persecuted by villagers, and so was Lord Rishabhdev, both.